بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، देखो ये मजलिस नंबर 34 है। ये आवाज आ रही है, आवाज बंद कर दे। जिक्र के मुख्तलिफ तरीके, गुज़िश्ता जिक्र के बारे में था, अब वही बात चल रही है कि जिक्रुल्लाह की अहमियत बताई थी कि जिक्र कितना अहमियत रखता है, और जिक्र में दिल न लगे तो भी करते रहो। रूहानियत और नूरानियत की हकीकत बताई थी। अभी जिक्र के मुख्तलिफ तरीके बता रहे हैं, बता दो। देखो, मशक्कत के बावजूद जिक्र में लगा रहे हैं। जैसा कि कल अर्ज किया था कि जब इंसान इब्तिदान जिक्र करना शुरू करता है तो तबीयत पर मशक्कत होती है, मशक्कत होती है और बार होता है। एक कैफियत सिर्फ जिक्र के साथ खास नहीं है, बल्कि हर नए काम को शुरू करने के बाद इब्तिदाअन इस काम को करते हुए मशक्कत मालूम होती है। हर टर्निंग पॉइंट, इंसान जब टर्न लेता है ना तो मशक्कत मालूम होती है, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। कोई भी काम, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ना मशक्कत है। जिक्र नहीं करता, जिक्र करना मशक्कत है। सच नहीं बोलता था, झूठ की आदत है, सच बोलना मशक्कत है। और गुनाह होते थे, उसको बचना उसे मशक्कत है। तो हर कोई भी काम, तो इब्तिदान इस काम को करते हुए मशक्कत मालूम होती है। इसी तरह जिक्रुल्लाह के शुरू में भी जब इंसान अपने आप को जिक्रुल्लाह का आदि बनाना चाहता है तो बाद अवकात जिक्र करने से दिल उलझता है, तबीयत पर बार महसूस होता है। लेकिन उसका इलाज यह है कि इस मशक्कत को बर्दाश्त किया जाए, इसका इलाज यह है कि इस मशक्कत को बर्दाश्त किया जाए, इस बार को उठाया जाए और घबरा कर जिक्र को न छोड़ा जाए, बल्कि दिल लगे या न लगे, तबीयत उलझे या सुलझे, उलझे या सुलझे, यानी तबीयत लगे या न लगे, यूं हर हालत में जिक्र के अंदर इंसान मशगूल रहे, इसका नतीजा होगा कि रफ्ता रफ्ता दिल लगने लगेगा। देखिए, बचपन में जब माँ बाप ने कहा था कि नमाज पढ़ो, उनके कहने पर नमाज शुरू कर दी थी, क्या उस वक्त नमाज में तुम्हारा दिल लगता था? नहीं, उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं लगता था, बल्कि दिल भागता था। तबीयत नमाज पढ़ने पर आमदा नहीं होती थी। जब माँ बाप नमाज पढ़ने पर इसरार करते तो दिल में ख्याल आता कि हम पर जुल्म कर रहे हैं। जी, ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। तो उस वक्त नमाज पढ़ना मशक्कत मालूम होता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो मशक्कत जुज्वे जिंदगी बन गई, एक जिंदगी का हिस्सा बन गया। और अब यह हालत हो गई कि अगर कोई शख्स किसी नमाजी से कहे कि तो 1 लाख रुपया ले ले और 1 वक्त की नमाज छोड़ दे, तो नमाजी 1 नमाज भी छोड़ने पर तैयार नहीं होगा। अब उसे नमाज पढ़े बगैर चैन नहीं आता। इसी तरह जिक्र का हर हाल है कि इब्तिदान जिक्र में मशक्कत होती है, वो बोझ मालूम होता है, लेकिन जब रफ्ता रफ्ता वो जिक्र मामूल के अंदर शामिल हो जाता है और उसकी आदत पड़ जाती है तो वो जिक्र जुज्वे जिंदगी बन जाता है। और अल्लाह ताला इस जिक्र को जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना देते हैं कि उसके बगैर चैन नहीं आता। तो ये था हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, जो जलील कदर मुहद्दिस और आलिम थे और इल्म फजल का बहुत ऊंचा मकाम रखते थे। सही बुखारी की शरह फतहुल बारी के मुसन्निफ थे। उनका यह हाल था कि जिस वक्त वो फतहुल बारी लिखते और लिखने के दौरान कलम पर कत लगाने की जरूरत पेश आती, एक निशान, क्योंकि उस जमाने में लकड़ी के कलम होते थे ना, तो लिखते लिखते उसमें वो घिस जाता था, तो उस पर कत लगाते जिससे राइटिंग अच्छी बनती है। लिखते लिखते जब उनकी नोक खराब हो जाती तो चाकू से उस पर कत लगाना पड़ता था। तो जब हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह को किताब लिखने के दौरान कलम पर कत लगाने की जरूरत पेश आती, तो जितना वक्त कलम पर कत लगाने में गुजरता और वो कटिंग करने में, उतना वक्त भी खाली गुजारना गवारा नहीं था, इसलिए उस वक्त को जिक्रुल्लाह में गुजारते। लिहाजा जब जिक्र इंसान का जुज्वे जिंदगी बन जाता है तो उसके बगैर इंसान को चैन नहीं आता। जी अच्छा, जिक्र के तरीके मुख्तलिफ हैं। जिक्र का एक तरीका जिक्र जहरी है, जोर से जिक्र करना, और एक तरीका जिक्र कल्बी है जिसको मुराकबा कहते हैं, दिल से जिक्र करना। बाद हजरत सूफिया ने इस मुब्तदी के लिए, जिसकी तबीयत अभी जिक्रुल्लाह से मशक्कत महसूस कर रही है, जिक्र के कुछ खास तरीके बयान फरमाए हैं कि इस तरह जिक्र किया करो, इस तरह जिक्र करने से जिक्र में दिल लगेगा और घबराहट नहीं होगी, वरना अंदेशा यह है कि घबराहट के नतीजे में वो जिक्र करना छोड़ देगा। जी एक तरीका तो यह है। इन तरीकों में से एक तरीका जिक्र जहरी है, क्योंकि अगर वो अकेला चुपके चुपके जिक्र करेगा तो उससे दिल उलझेगा और दिल घबराएगा, इसलिए उससे कहा कि तू जरा बुलंद आवाज से जिक्र कर ले और थोड़ा सा लहन भी उसमें शामिल कर ले आवाज। उसके नतीजे में जिक्र के अंदर उसका दिल लग जाएगा। मसलन अगर आहिस्ता आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करता है तो उसका दिल नहीं लगता, लेकिन जब बुलंद आवाज से और जोर से जिक्र करेगा तो उसका दिल लग जाएगा। तो दिल लगाने की खातिर बुजुर्गों ने तजवीज किया कि जिक्र जहरी करो और लहन से करो, यानी थोड़ा सा आवाज से। जिक्र का एक तरीका जर्ब लगाना है। किसी को जर्ब का तरीका बता दिया कि जिक्र करते वक्त जर्ब लगाओ, जर्ब कहते हैं मानना, यानी वो एक तरीका होता है कि गर्दन को इसे इसे मखसूस तरीके से हिलाकर एक तरफ को जर्ब लगाना। तो जर्ब लगाने मतलब है मारना, चोट लगाना, यानी जिक्र करते वक्त किसी जगह पर जरा जोर डालना और उस पर चोट मारना। अमली तौर पर उसकी बहुत सी शक्लें अपने तजर्बा से मुफीद समझकर अहले तरबियत ने इख्तियार की है। उन्हीं में एक ये है कि जिस वक्त तुम ला इलाह कहो, ला इलाह कहो, उस वक्त गर्दन और चेहरे को दिल के करीब ले जाओ, गर्दन और चेहरे को दिल के करीब ले जाओ, और फिर गर्दन को दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ करो, ले जाकर ला इलाह, तो पीछे की तरफ करो, और उस वक्त तसव्वुर करो कि दिल में अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजों की मोहब्बत है, दिल में उस वक्त तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला के अलावा जितनी चीजों की मोहब्बत है, इस मोहब्बत को दिल से निकाल कर पीछे की तरफ फेंक रहा हूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड पर फेंको। ये गर्दन को झुकाया और दिल की तरफ से उसको राइट साइड तरफ खींचेंगे और राइट साइड के कंधे की तरफ उसको फेंक देंगे, तो ला इलाहा, तो उसको पीछे की तरफ फेंक रहा हूं कि दिल में से जितनी भी अल्लाह के अलावा की मोहब्बत है, और फिर इल्लल्लाह कहते वक्त गर्दन और चेहरे को दोबारा दिल के करीब लाकर झटका दो। समझ गए? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, तो फिर दिल की तरफ करीब लाकर झटका दो। तो और इस वक्त ये तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह की मोहब्बत को दिल में दाखिल कर रहा हूं। पहले तो निकालो, जो अल्लाह के अलावा की जितनी मोहब्बत है मैं उसको निकाल रहा हूं। इसलिए गर्दन को वहां से स्टार्ट करके राइट साइड के कंधे की तरफ कर खींच लो। उसके बाद फिर राइट साइड के से लेकर फिर लेफ्ट साइड पर वही दिल की तरफ जोर से एक जर्ब लगाना है कि अब अल्लाह की मोहब्बत को दिल में दाखिल कर रहा हूं। ये तरीका बुजुर्गों ने इसलिए तजवीज किया कि जब जाकिर इस जर्ब के अंदर मशगूल होगा तो उसका दिल जिक्र में लग जाएगा। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, तो ये जिक्र जहरी बाद मशाइख वो देते हैं, तो फरमाया तो उसका जिक्र में दिल लग जाएगा। और जब बार बार रोजाना ये तसव्वुर करके जिक्र करेगा और इस तरह जिर्ब लगाएगा तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि दिल से गैरुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाएगी। बहरहाल बुजुर्गों, तो एक जिक्र तो बताया, जिक्र जहरी बस, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे हम तस्बीहात पूरी करते हैं, और एक जिक्र का खास तरीका जो जर्ब लगाना, ये मशाइख से जब बैत होते हैं तो मशाइख तस्बीहात की पहले पाबंदी कराकर उसके बाद फिर ये खास जिक्र देते हैं जिसमें इस तरीके से जर्ब लगाने को बताया जाता है। ये उसके बाद का नंबर, पहला नंबर तो सिर्फ जिक्र करना है, दूसरा नंबर आता है फिर जर्ब लगाना, ये मशाइखे चिश्तिया के नजदीक। और तीसरा तरीका, बहरहाल बुजुर्ग और मशाइखों ने जिक्र के जो खास तरीके तजवीज किए ये बतौरे इलाज के, ये तरीका न तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और न ही साबित करने की जरूरत है। साबित तो इतना है कि जिक्र करो, कुरान में आ गया ना, उज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, ये तो कुरान में आ गया, तो अब उससे क्या जिक्र की साबित करने की जरूरत है? तरीका तो फिर मुख्तलिफ होगा। तो फरमाया न साबित करने की जरूरत है। बाद हजरात ने ये ने और तरीके भी तजवीज किए, मसलन बाद मशाइख ने फरमाया कि जब जिक्र करने बैठो तो चार जानू होकर बैठ जाओ, चार जानू, चार जानू समझ गए अबे, पलोटी वाल के, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं चार जानू को। तो पता नहीं, अभी वो कोई जानता होगा, सेट क्रोसेट लेग, क्रोसेट लेग, क्रोसेट, हाँ शायद वही। तो चार जानू बैठ जाओ, नहीं साबित करने। तो फरमाया तरीके भी तजवीज, मसलन बाद मशाइख जिक्र करने बैठो तो चार जानू होकर बैठ जाओ, फिर दाहिने पांव के अंगूठे को, दाहिने पांव राइट साइड के अंगूठे और साथ वाली उंगली से समझे, बाई तरफ के घुटने के अंदर की रग जिसको रगे की मियास कहते हैं उसको पकड़ लो। फिर दाहिने पांव के अंगूठे और साथ वाली उंगली, जब चौकड़ी मारेंगे ना तो जो है ना हम लेफ्ट साइड से क्या पकड़ेंगे, दाहिने पैर के अंगूठे को और उसके साथ वाली उंगली से बाई तरफ के घुटने के अंदर की रग, बाई तरफ अंदर जिसको रगे की मियास कहते तो उसको पकड़ लो। इस रग को पकड़ने से दिल जमी पैदा हो जाएगी और फजूल ख्यालात और वसाविस नहीं आएंगे। अब ये बात तजर्बा की है और तजर्बे की बुनियाद पर ये तरीका बता दिया, और ये योगी करने वाले भी करते हैं, योगा करने वाले हैं ना, वो देखना तस्वीरों के अंदर बाजे खामोशी से बैठे हैं और वही चौकड़ी मारकर बैठे हैं और दो हाथों से उन्होंने अंगूठे पकड़े हुए होंगे। जी, तो फरमाया फिर से सुन लो, उसके साथ वाली अंगूठी, दाएं पैर का अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली से, फिर बाएं तरफ के घुटने के अंदर की रग जिसको रगे की मियास कहते उसको पकड़ लो। इस रग को पकड़ने से दिल जमी पैदा हो जाएगी और फजूल ख्यालात, दिल जमी यानी यकसुई पैदा होगी और फजूल ख्यालात और वसाविस नहीं आएंगे। अब ये बात तजरेबे की, और तजरेबे की बुनियाद पर इस तरीका बताया जाता है। अब ये हदीसों में नहीं मिलेगा। इस जिक्र का एक तरीका, ये भी आगे का तरीका है, जब इंसान इसमें चला जाता है जर्ब के अंदर, तो फिर उसके बाद ये जिक्र का भी तरीका बता दिया जाता है। फिर एक जिक्र का तरीका पास अनफास है, पास अनफास जो किताब हम पढ़ते हैं ना, वो अनफास ईसा है, ये पास अनफास। इसी तरह जिक्र का एक खास तरीका पास अनफास कहलाता है। इस तरीके में ये होता है कि हर सांस की आमद और रफ्त में, सांस जो ले रहे हैं अंदर और निकाल रहे हैं, इसके आने जाने में जिक्रुल्लाह को इस तरह जज्ब कर लिया जाता है कि हर सांस के साथ अल्लाह का जिक्र जबान से जारी हो जाता है। सांस आ रहा है तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है, और सांस अंदर जा रहा है तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है। हर सांस की रफ्तार के साथ अल्लाह का नाम निकल रहा है। ये भी सब प्रैक्टिस करनी पड़ती, तो उसको अनफास ईसा कहा जाता है, पास अनफास कहते हैं। तो सांस जा रहा है तो अल्लाह का जिक्र, हर सांस की रफ्तार के साथ अल्लाह का नाम निकल, इस तरीके की मशाइख के यहां मश्क कराई जाती थी, जिसके नतीजे में चीज हासिल हो जाती थी। ये भी एक तरीका। फिर जिक्र का एक तरीका और भी है। इसी तरह सुल्तानुल अस्कार का नाम आपने सुना होगा, ये मशाइख नक्शबंदिया के अंदर सातवां सबक है, सुल्तानुल अस्कार। तो ये सुल्तानुल अस्कार दूसरे जो सिलसिले में है, वो असबाक नहीं होते हैं, वो करते 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 फिर उनको एक एक तरीका बताया जाता है। सुल्तानुल अस्कार का नाम आपने सुना होगा, ये भी जिक्र का एक खास तरीका है, जिसमें तमाम लताइफ के साथ जिक्र की आवाज निकलती है, तमाम लताइफ के साथ उसको सुल्तान, यानी सारे लताइफ जाकिर बन जाते, पूरी बॉडी जाकिर हो जाती। वल्लाहु आलम। इसी तरह हजरते सूफिया किराम ने एक तरीका ये निकाला कि जब जिक्र करने बैठो तो ये तसव्वुर करो, ये भी है, ये तसव्वुर करो, एक दीवार भी मेरे साथ जिक्र कर रही है, दीवार भी मेरे साथ जिक्र कर रही है। ये आता है ये कादरिया सिलसिले के अंदर, जिसको मुराकबाते यानी अनफुसी और आफाकी ये आता है, तो उसमें कहते हैं कि दीवार भी मेरे साथ जिक्र कर रही है, ये छत भी जिक्र कर रही है, ये दरवाजा भी जिक्र कर रहा है, ये पंखा भी जिक्र कर रहा है, ये जमीन भी जिक्र कर रही है, ये आसमान भी जिक्र कर रहा है, ये सारी कायनात जिक्र कर रही है। इस तस्वुर से जिक्र के अंदर एक खास निशात और कैफियत हासिल हो जाती है। ये कादरिया सिलसिला देखो, उसमें सारे सिलसिले जमा कर दिए, चिश्तिया, नक्शबंदिया और कादरिया। हाँ, अभी देखो दोनों तो चारों सिलसिले जिक्र कर दिया। अभी आ रहा है कौन सा मालूम है, सोहरवर्दिया जिक्र का सिलसिला, लिखा नहीं है लेकिन ये जानते हैं। तो फरमाया कुरान करीम में हजरत दाऊद इस्लाम के जिक्र का वाक्य आता है कि जब वो जिक्र करते थे तो पहाड़ और परिंदे भी साथ में जिक्र करते थे। फरमाया वसखरना मा दाऊद अलजिबाल युसब्बिहन वत्तैर, यानी हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ और परिंदों को मुसक्खर कर दिया था, जो उनके साथ जिक्र किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते तो पहाड़ भी और परिंदे भी उनके साथ सुबहान अल्लाह कहते। क्या लगता होगा जी? तो ये जो होता है ना, ये सहर वर्दियों में यही होता है कि जंगलों में बैठकर जिक्र करना और उनके साथ में ये तसव्वुर करना कि हर चीज मेरे साथ जिक्र करती है। पहाड़ और परिंदों के जिक्र से हजरत दाऊद अली इस्लाम का फायदा। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाइल सुलूक में लिखा है कि पहाड़ों और परिंदों के जिक्र करने को अल्लाह ताला ने इन इनामात पे शुमार फरमाया है, जो इनामात अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर फरमाए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहाड़ और परिंदे जिक्र करते थे तो उससे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या फायदा पहुंचता है? جس کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور انعام کے ذکر فرمایا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یوں تو ذکر بڑی نعمت ہے، چاہے وہ ذکر کسی حالت میں بھی ہو، چاہے تنہائی میں ذکر ہو، لیکن اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ کوئی جماعت بھی ذکر کرنے میں شامل ہو جائے، دیکھو اس سے مشائخ نے وہ نکالا ہے نا کہ جمع ہو کر ذکر کرے، فرمایا دیکھو چاہے وہ تنہائی میں ہو لیکن اگر ذکر کرنے والے کے ساتھ کوئی جماعت بھی ذکر کرنے میں شامل ہو جائے تو اس کے ذکر میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، کیف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل ذکر میں خوب لگنے لگتا ہے۔ لہذا یہ جو پہاڑ اور پرندوں کو مسخر کر دیا گیا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرو، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام یہ ہے کہ ان کو ذکر میں نشاط پیدا ہو جائے، ہے نا، مجلس سے ذکر ہو گئی نا ثابت، تو اس سے مجلس سے ذکر بھی ثابت ہو گئی کہ ان کو جمع ہو کر ایک مکان پر اور اس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، جو زہری کراتے یا مراقبہ کرا مراقبہ کرے، یا جو دعوت کے ہے اسی لیے وہ دعوت بھی ثابت ہو گئی کہ کہیں بھی جمع ہو کر دعوت کرے، یہ بھی ان کا ہے، تو جو جو مشائخ جہاں ان کا جو ذکر ہے وہ اس طریقے سے کرے یہ ثابت ہے۔ تو فرمایا تو اس میں کیا ہوتا ہے، نشاط پیدا ہو جائے، اسی لیے صوفیاء کرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کے ذکر کا ایک طریقہ ہی نکالا، جب تم ذکر کرو تو یہ تصور کرو کہ در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ پرندے، یہ درخت بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور اس تصور کی مشق کرو، اور مشق کی کثرت کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعتاً یہ سب چیزیں میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں اپنی طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ایک تصور جب بند جاتا ہے نا، جیسے مراقبے میں آپ کو کیا بتایا کہ آپ یہ تصور کرو کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے، یہی ہے نا، مراقبے میں یہی بتایا جاتا ہے، تو کیا اس تصور کے ذریعے سے ایسا بند جاتا ہے کہ دل کا ذکر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں میرا دل ذاکر ہو گیا؟ تو ایسے ہی اس سلسلے میں فرمایا تم جنگل میں بیٹھ کر یا تصور کرو کہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، میری دیوار بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، درخت بھی، پرندے بھی، تو جب اس کی ایک مشق ہو جائے گی تو اس تصور کے ساتھ تمہیں لگے گا چاروں طرف سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گیا ابھی؟ مراقبہ وہ تصور ہے، تو ہم دل کو ذاکر بنا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ، مختلف طریقے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ مراقبہ کیا ہے، کہ وہ تصور کرو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، تو وہاں تصور کر رہے کہ میرے ساتھ پہاڑ بھی اللہ اللہ کہہ رہے، درخت بھی کہہ رہے، پرندے بھی کہہ رہے، زمین بھی کہہ رہی ہے، آسمان بھی کہہ رہا ہے، تو ایک تصور کے ساتھ جب جاتا ہے تو اس کو ہر طرف سے پھر اس کے اندر ایک عجیب سی ایک نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو اس راستے میں تھوڑا سا آئے گا آگے تو پھر وہ سب سمجھے گا، ابھی تو لگتا ہے کہ سب اوپر سے جا رہا ہے، بولے یہ کیسی باتیں کرتے، ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ چیز تو آنکھوں سے دیکھ لی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے ابھی دیکھی نہیں ہے، مشق کرے، آ جائیے اور انشاءاللہ آپ کو وہ چیز پھر بعد میں سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعتاً اب وہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ایک تصور کا جو ہے نا وہ ہے، تو فرمایا کثرت کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعتاً سب چیزیں میرے ساتھ ذکر کر رہی ہے، تو ایسا ہمارا لگے گا ہمارا دل بھی ذکر کر رہا ہے، پھر اس دل کے ذکر کا اثر بھی ہمیں پڑے گا۔ اچھا، ذکر کے طریقے علاج ہے، یاد رکھو یہ کیا ہے، دوا ہے، علاج کا مطلب دوا ہے، علاج ہے، مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اور کچھ چاہا جا رہا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام نے ذکر کے جو خاص طریقے بیان فرمائے ان کا مقصد یہ تھا کہ ذکر میں انسان کا دل لگ جائے، اور یہ طریقہ بطور علاج کے بیان فرمائے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ خاص طریقے نہ مقصود ہے نہ مسنون ہے، یہ خاص طریقے نہ مقصود ہے نہ مسنون ہے، اور نہ ان طریقوں کو مسنون سمجھنا جائز ہے۔ مثلا ہمارے تمام مشائخ کے یہاں 12 تسبیح، 12 تسبیح بہت معروف ہے، مشائخ چشتیہ کے اندر 12 تسبیح، پہلے تو عام ذکر دیتے جو صبح شام کی 3-3 تسبیحات ہیں، جب اس کے پابندی ہو جاتی ہے، کارگزاری سنائی جاتی ہے، تو پھر اس کو आगे देते हैं 12 तस्बीह। इस 12 तस्बीह में फिर बताया जाता है जिक्र करने का तरीका, जिसमें वो जरब वाला जिक्र बताया था कि इस तरीके से करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फिर जरब वाली तस्बीह उसमें बताई जाती है। तो फरमाया बहुत मारूफ है ये 12 तस्बीह जरब लगाकर की जाती है, मगर ये खास तरीका न मकसूद है न मसनून है। अगर कोई शख्स उसको मसनून समझ ले तो ये तरीका बिदत हो जाएगा, बल्कि इसके जायज होने की शर्त यही है कि उसके बारे में तसव्वुर रखा जाए कि ये तरीका मुब्तदी को सिर्फ इलाज के तौर पर बताया जाता है, इस तरीके जिक्र को, ताकि उसका दिल जिक्र में लग जाए और ख्यालात में यकसू पैदा हो जाए। हाँ, तो ये इलाज है बताया, ये मकसूद है। मकसूद क्या है? मकसूद तो वो बताए, ताअत पर, ताअते दवाम, और क्या बताया था, कसरते जिक्र, गुनाहों दवाम के अंदर, ताअते दवाम के अंदर करने वाले अमल भी करना, बचने वाले अमल से बचना, ये ताअते दवाम हो, कसरत जिक्र। तो असल में इस जिक्र के जरिए से हमें ताअते दवाम मिलेगी। तो फरमाया ताकि उसका दिल जिक्र में लग जाए, ख्यालात में सो। जरब लगाकर जिक्र करने पर एतराज करते बाज़ लोग, आजकल लोग इफराद और तफरीद में मुबतला हो गए। बहुत से लोग कहते हैं भाई बिदा 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 कर देते, छोड़ देते, समझते नहीं ये बात को। अरे बात को समझने के लिए एतराज करो, ये तो कि हमारी समझ में नहीं आता तो कह दिया बिदत। तो फरमाया बहुत से लोग कहते हैं, चुनाचे बाज लोग जरब लगाकर जिक्र करने को बिदत कहते हैं कि ये क्या लगा है, और ये कहते हैं कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जरब लगाकर जिक्र फरमाया हो, और न किसी सहाबी से जरब लगाकर जिक्र करना साबित है। और जब ऐसा जिक्र साबित नहीं है और तुम लोग ऐसा जिक्र कर रहे हो, तो लिहाजा ये जिक्र बिदत है। जी, तो चुनाचे एक साहब मुझसे कहने लगे कि आपके तमाम मशाक मशाइख बिदती है, माज अल्लाह, क्या वो बिदती है क्योंकि ऐसे जिक्र कराते हैं, तो इसलिए कि ये मशाइख जरब लगाकर जिक्र करने की तलकीन करते हैं, और इस तरह जिक्र करना हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। इसको कहते हैं ना अकल मारी जाती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। भाई जिक्र करना तो साबित है ना, बस जिक्र करना साबित है, अब जिक्र किस तरीके से किया जाए वो तो तुम्हारे अपने हिसाब से, जमाने के हिसाब से अल्लाह ताला उलमा के दिल पर, मशाइख के दिल पर खोलते हैं। जैसे अब इसकी मिसाल ऐसी होती है कि भाई देखो बीमारी आ गई तो सेहत हासिल करना जरूरी, अब सेहत हासिल करने के लिए डॉक्टरों के तरीके बदलते रहते, अब इस वक्त में जो इलाज के तरीके क्या हुजूर के जमाने में है, ये सुन्नत वाले तरीके के सुन्नत के खिलाफ है, बताओ। तो इस पर तो कोई एतराज नहीं करता, लेकिन हम उसको सुन्नत के खिलाफ नहीं कहेंगे, हमने कहा सेहत जरूरी है। अब सेहत चाहे जिस तरीके से जिस जमाने में उसके माहिरिन जैसा इलाज करेंगे तो उस वक्त होगा, हुजूर के जमाने में कोई ऑपरेशन नहीं था, आज कर रहे, तो फिर ये भी तो बिदत हो गई भाई, ऑपरेशन कराना भी बिदत। हाँ, तो असल में मकसूद याद रखो, मेन चीज है जिक्र करना, मेन चीज है सेहत हासिल करना। अब सेहत हासिल करने के लिए जिस तरीके से भी हो रहा, वो डॉक्टर का वो माहिर जिस तरीके से करे, सेहत हासिल करना जरूरी। ऐसे ही अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र मशाइख जिस तरीके से बताए उस हिसाब से करेंगे, वो मकसद तक पहुंच जाएगा। तो जो लोग ये मेन चीज को नहीं जानते तो फिर एतराज करते हैं। फरमाया मैंने उनसे पूछा, अच्छा देखो इस तरह जिक्र करना हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। तो फरमाया मैंने उनसे पूछा उस साहब से कि जब तुम्हें नजला जुकाम होता है तो तुम जोशांदा पीते हो? कहने लगे कि हाँ पीता हूं। मैंने पूछा कि क्या हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जोशांदा पीना साबित है ये बताओ, या हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जोशांदा पिया है, या किसी सहाबी से जोशांदा पीना साबित है? कहने लगे जोशांदा पीना तो साबित नहीं है। मैंने कहा जब साबित नहीं है तो आपका जोशांदा पीना भी तो बिदत हो गया, वही हुआ ना, इसलिए कि आपका दावा उसके बगैर साबित नहीं हो सकता, कि यूं कहा जाए कि जो चीज हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो वो बिदत है। तो चूंकि जोशांदा पीना भी साबित नहीं, लिहाजा ये भी बिदत है। अगर ये कहना चाहते हुजूर से साबित नहीं वो बिदत है, नहीं। दर हकीकत सही बात यह है कि जिक्र करने के सारे तरीके इलाज है। यानी जिस शख्स का जिक्र में दिल नहीं लगता और जिक्र में उसकी तबीयत माइल नहीं होती, तो उसके इलाज के लिए तरीका बताया गया कि तुम इस तरीके से जिक्र कर लो ताकि जिक्र में तुम्हारा दिल लग जाए, गोया के जोशांदा पिलाया जा रहा है, इस जिक्र का जोशांदा पिलाया जा रहा है। हाँ, अगर कोई शख्स जिक्र के किसी खास तरीके के बारे में ये कह दे कि ये तरीका सुन्नत है या ये तरीका मुस्तहब है या ये तरीका ज्यादा अफजल है, तो फिर वो तरीका बिदत हो जाएगा। हाँ, ये कह देना बिदत हो जाएगा। इसलिए इलाज के मुख्तलिफ तरीके थे, दावत तबलीग में अलग तरीका है और खानकाहों में अलग तरीका है, तो ये अलग, और खानकाहों में भी मशाई के चिश्तियां अलग है, नक्शबंदियां अलग है, कहना यही अफजल है और यही सही है, तो फिर ये बिदत हो जाएगा। बल्कि जो जिस तरीके से ले लेके जा रहे वो सब के सब अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। तो एक दूसरे की काटना नहीं चाहिए, नहीं वो गलत है ये सही है, नहीं। तो फरमाया क्योंकि अफजलियत का मदार, इस्तेहबाब का मदार और सुन्नत का, सुन्नियत का मदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत पर है। जो चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं वो सुन्नत नहीं हो सकती, वो अफजल नहीं हो सकती, अलबत्ता नाफे हो सकती। हाँ, नफा तो दे सकती। अफजल तरीका सिर्फ सुन्नत का तरीका है, जो सुन्नत है वो तो अफजल ही अफजल है। यानी जो चीज हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं वो नाफे हो सकती है, अनफा भी हो सकती है, ज्यादा नाफे। लेकिन जो चीज हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं वो अफजल नहीं हो सकती। हमारे बुजुर्गों ने इफरात और तफरीत से हद से आगे बढ़ने को और हद से नीचे उतरने को हमेशा एहतराज किया है। इसलिए जिक्र के इन खास तरीकों के बारे में न तो ये कहा कि ये बिदत है, उनको इख्तियार न करो, और न ये कहा कि तरीका अफजल है, करो। याद रखिए जिक्र के अंदर, अब आगे सुनो, जिक्र के अंदर अफजल तरीका हमेशा हर हालत में कयाम, हर हालत में कयाम कयामत तक जिक्र खफी है। देखा, सो गए सर। अफजल तरीका जो फरमाया जिक्र खफी है, यानी जिक्र कल्बी। अफजल तरीका फरमाया ये कयामत तक जिक्र खफी, उसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। जिक्र खफी यानी उसी जिक्र खफी को ही जिक्र कल्बी कहते हैं। यानी कयामत तक, कयामे कयामत यानी कयामत तक, यानी आखिर तक, इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश। जिक्र जितना आहिस्ता आवाज से होगा उतना ही अफजल होगा। उदउ, कुरान में फरमाया उदउ रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफिया, अपने रब को आजीजी से और चुपके चुपके पुकारो। तो मुराकबा जो करते हैं जिक्र कल्बी है, अपने रब को पुकार रहे हैं। और दूसरी जगह फरमाया वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक तज़र्रुअ व खीफतन व दून अल जहर मिन अल कौली, अपने रब को अपने दिल में पुकारो आजिजी के साथ, डरते हुए और जोर की आवाज के निस्बत कम आवाज के साथ। देखो यही दलाइल है नक्शबंदिया के। नक्शबंदी सिलसिले में जिक्र खफी है, जिक्र कल्बी है, उसी को मुराकबा कहते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना है। इसमें कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई जर्ब नहीं। इससे मालूम हुआ कि ज्यादा जोर से जिक्र करना पसंदीदा नहीं, पसंदीदा जिक्र वो है जो आहिस्ता आवाज के साथ हो। ये सारा सिखाने के लिए था, जो कहीं फरमाया जोर से जिक्र करो और कहीं जर्ब लगाओ, ये सारा सिखाने के लिए। लेकिन अफजल कहेंगे जिसको सुन्नत तरीका कहते हैं, फरमाया वो आहिस्ता ही है। जिक्र जहरी जायज है, अफजल नहीं। ये उसूल हमेशा का है, अबदी है और कयामत तक کبھی نہیں ٹوٹ سکتا کہ افضل ذکر ذکر خفی ہے. افضل ذکر ذکر خفی ہے، ذکر جتنا آہستہ کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. لیکن وہ طبیعت جمتی نہیں، اس لیے کوئی مشائق اس طریقے سے کراتے ہیں تو ثواب ملے گا. البتہ ذکر جہری جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لہذا ذکر جہری کبھی ذکر خفی سے افضل نہیں ہو سکتا، ذکر خفی ہی افضل ہے. اور حضرت شیخ نے بھی فضائل ذکر میں، شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذکر خفی ذکر لسانی یعنی ذکر جہری سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. یہ لفظ لکھا ہے 70 گنا زیادہ ذکر خفی سے. اور پھر وہاں پر فرمایا ذکر خفی اسی کو مراقبہ بھی کہتے، وہاں پر یہ بھی فرمایا، اس کو ذکر قلبی بھی کہتے، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اور خامس بھی کہتے، ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے. ذکر خفی سے افضل نہیں ہو سکتا. البتہ علاج کے طور پر ذکر جہری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ذکر جہری کو افضل سمجھنے لگے، یا کوئی شخص ذکر جہری کو مخصوص سمجھ لے، یا ذکر جہری کو مسنون سمجھ لے، یا ذکر جہری نہ کرنے والے پر نکیر کرنے لگے، تو پھر یہی چیز بدعت بن جاتی ہے. اسی کا نام بدعت ہے. اس راستے میں اسی افراط اور تفریط سے بچ کر گزرنا ہے. اس لیے ہمارے اس آخری دور کے بزرگ ذکر جہری کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرتے، بلکہ ذکر خفی کی تلقین فرماتے ہیں. جی ہاں، عجیب عجیب چیزیں بتائی. تو دیکھو یہ ثابت ہے ذکر خفی کے قرآن کے اندر سے بھی. بات دراصل یہ ہے کہ جب کام آگے بڑھتا ہے، جب کام آگے بڑھتا ہے تو اپنی حد پر نہیں رہتا. اب ذکر کے مندرجہ بالا طریقے صوفیاء کرام نے بطور علاج بتائے تھے، ہے نا، یہ اوپر کے جو بتایا، لیکن رفتہ رفتہ یہ طریقے خود مقصود بن گئے. بدعت کیا ہوا ذکر؟ اسی لیے آج کل لوگ کہتے ہیں، بولے ذکر تو بولے بدعت ہی لوگ ہیں. نہیں، یہ بدعت بن گیا، حقیقت میں بدعت نہیں ہے. تو فرمایا دیکھو یہ آہستہ آہستہ یہ طریقے خود مقصود بن جاتے. اب ہر سلسلہ والوں نے اپنے لیے ذکر کا ایک طریقہ مقرر کر لیا کہ فلاں سلسلے میں پاس انفاس کے طریقے سے ذکر ہوتا ہے، فلاں سلسلے میں سلطان الاسکار ہوتا ہے، اور فلاں سلسلے میں فلاں طریقے سے ذکر ہوتا ہے. یہ اس سلسلے کی خصوصیت بن گئی. اب اس سلسلے سے وابستہ لوگ باہر کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں اور منواتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں یا افضل نہیں. صحیح اور افضل طریقہ وہ ہے جو ہمارے شیخ نے بتایا ہے. تو اس طرح جو چیزیں مقصود نہیں تھی وہ مقصود ہو گئی. اسی کا نام احداث فی الدین ہے، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کی جڑ کاٹنی ہے. اللہ اکبر. ذکر میں ضرب لگانا مقصود نہیں، چنانچہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، طریق خاص سے ضرب نہ مقصود ہے، طریق خاص سے ضرب نہ مقصود ہے، اور نہ موقوف علیہ مقصود ہے. نہ مقصود ہے نہ موقوف علیہ مقصود. جس طرح بے تکلف بن جائے کافی ہے. یعنی وہ ضرب لگانے کا جو طریقہ بتایا ہے نا، خاص کر کے یوں گردن کو جھکا کر اور رائٹ سائڈ پر کھینچو اور پھر ضرب زور سے لگاؤ، تو فرماتے ہیں یہ خاص طریقہ، یہ نہ مقصود ہے اور نہ مقصود کی طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ موقوف ہے. یعنی اس طریقے سے ہی ذکر کروں گے تو ہی آپ اللہ تک جا سکیں گے، اس کو کہتے ہیں موقوف. تو مقصود اللہ ہے اور اللہ مقصود ہے، اس مقصود تک جانے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں. اب سمجھے؟ تو نہ مقصود ہے نہ موقوف علیہ مقصود ہے. جس سے بے تکلف بن جائے کافی ہے، یعنی جیسا بھی ہو جائے بس وہ کرتا جائے، جس کو جس طریقے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کرتے جاؤ تو آگے اللہ راستہ کھلتا جائے. نہیں بولے نہیں تم نے گردن صحیح نہیں لائی اور صحیح جھٹکا نہیں مارا اور یہ نہیں کیا، وہ ایسا نہیں ہے. جس کو جیسا بن جائے کرتے جائے، مقصود مل جائے گا. یعنی ضرب لگا کر ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ تو نہ تو خود مقصود ہے اور نہ ہی ذکر کا جو مقصود ہے وہ اس ضرب پر موقوف ہے. کہ ضرب کے بغیر وہ مقصود حاصل نہ ہوتا ہو، یعنی اگر ضرب نہیں لگائیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ کے اندر تعلق نہیں ملے گا، ایسا نہیں. بلکہ ضرب کے بغیر بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے. ارے مقصود تو ان کا ذکر ہے, مقصود تو اللہ کا ذکر ہے اور ان کا نام لینا ہے, جس طرح بھی بن پڑے, چاہے ضرب سے ہو یا بغیر ضرب کے ہو. لہذا ان قیود میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ قیود مت لگاؤ. ہاں کوئی کر لے گا اور وہ بھی نکل جائے گا, کوئی نہیں کرے گا لیکن ذکر کی پابندی کرے گا وہ بھی نکل جائے گا. اصل مقصود ان کا نام لینا ہے, اللہ کا نام لینا ہے. ایک صاحب میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت تسبیحات تو پڑھتا ہوں لیکن وہ 12 تسبیح نہیں ہو پاتی, یعنی 12 تسبیح اس کو خاص طریقے سے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. تو حضرت نے ان صاحب سے پوچھا کہ طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ دیکھا فرمایا تو فرمایا طریقہ مقصود ہے یا ذکر مقصود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اصل مقصود تو ذکر ہے, طریقہ مقصود نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم 12 تسبیح خاص طریقے کے بغیر پڑھا کرو. پھر فرمایا کہ میں بعض اوقات خاص طریقے کے بغیر 12 تسبیح پڑھ لیتا ہوں جو اطمینان سے 15 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اگر خاص طریقے سے ضرب لگا کر پڑھا جائے تو اس کے لیے 40 منٹ چاہیے. تو بہرحال ضرب لگا کر ذکر کرنا نہ تو مقصود ہے نہ مسنون ہے. اگر موقع ہو تو کر لو, ورنہ سیدھے سادے طریقے سے جس طرح بن پڑے ذکر کر لو, اللہ کا نام لے لو. اس لیے اصل مقصود تو ان کا نام لینا ہے. سبحان اللہ, کتنے آسان کر کے بتا دیا. یہ تفصیل اس لیے عرض کر دی, یہ دیکھو یہ ساری باتیں آپ کے لیے تو بہت نئی باتیں ہوں گی. یہ اس لیے عرض کر دی کہ ہمارے دور میں افراط و تفریط چل رہی. کوئی کہتا ہے یہ افضل, کوئی کہتا ہے وہ افضل. ایک قوم وہ ہے جو صوفیاء کرام کے ان طریقوں کو علل اطلاق بدعت کہتی. ایک قوم وہ ہے جو صوفیاء کے یہ سارے طریقے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں بدعت ہے, اس لیے وہ صوفی کا نام لیتے ہی گھبرا جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تصوف بھی بدعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ تصوف بھی بدعت ہے اور یہ خانقاہ بھی بدعت ہے اور یہ چلہ کشی بھی بدعت ہے اور ذکر کرنے کے خاص طریقے بھی بدعت ہے. یہ لوگوں نے اور وہی عوام میں چل پڑی ہے, اس لیے عوام بھی اس کے پیچھے آ گئی اور وہ سمجھتی کچھ نہیں ہے, کہتے بدعت بدعت. حالانکہ علماء کے پاس جا کر سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہمارے کانوں میں آئی ہے, یہ کہاں اور کب تک بدعت ہوتی ہے یہ بتائیے. لیکن آج پوچھنے کی عادت نہیں ہے, بس جو کانوں میں آ گیا اور اس کو سمجھ لیا, جس کی بات پہلے کانوں میں پڑ گئی اسی کی بات مان لی. اس لیے یہ باتوں کی تفصیل کرنی پڑتی ہے. دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا, انہوں نے تو بدعت کر دیا اور دوسری طرف افراط تفریط ہو گیا نا, یہ انہوں نے حد سے آگے نکل گئے کہ سب چیز کو بدعت کہہ دیا. اور دوسری طرف ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا, ایک جماعت جس نے ذکر کے ان خاص طریقوں کو ہی مقصود بذات بنا دیا. چنانچہ یہ جاہل پیر اپنی خانقاہیں بھی کھول کر بیٹھ گئے ہیں. ان کا کہنا یہ کہ جس نے پاس انفاس کے طریقے سے ذکر نہیں کیا وہ تصوف کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں, یعنی الف با سے بھی واقف نہیں. گویا کہ پاس انفاس ہی مقصود بذات ہے, یہ دوسرے انتہا. اب ذکر کا خاص طریقہ مقصود ہے ہی نہیں, یہ ہے. ایسے غلط پیر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس طریقے سے ذکر کروں گے تو تمہیں مقصود ملے گا اور اس طریقے سے کروں گے تو کچھ نہیں ملے گا. تو ہمارے بزرگوں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اعتدال کا راستہ رکھا ہے, صراط مستقیم پر رکھا ہے اور اس پر ہمیں چلا دیا. اس اعتدال کے راستے میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, اور یہ بتلا دیا کہ یہ راستہ جائز ہے لیکن بذات خود مقصود نہیں, اس پر عمل کرو. تو دیکھا, تو اللہ کا شکر ہے ہم کہاں پر ہے, صحیح راستے پر ہے. ان ساری باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم, چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح راستوں پر ہیں اور اللہ ہمیں موت تک صحیح راستے پر جمائے رکھے. اب صحیح راستہ ملا ہے تو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن سبق سن رہے ہیں اور صرف بہت اچھا لگ رہا ہے اور ختم ہو جاتے دعا کر کے. ارے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے, مراقبہ کر لو, آنکھوں کو بند کر لیں. گردن کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.